नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शाम के 4:30 बज चुके हैं, वक्त हो चला है आपकी और हमारी मुलाकात का। मैं हूँ सुषमा और मेरे साथ है महिपाल।
आप सभी को मेरा भी प्यार भरा नमस्कार।
महिपाल, कल रात को मैंने एक सपना देखा जो मेरे दिल को छू गया और उसमें मुझे एक सच्चाई का एहसास हुआ।
अच्छा, जरा मुझे भी सुनाओ, आखिर आपने क्या सपना देखा?
सपना कुछ यूँ था कि मैं एक नदी के किनारे बैठी हुई थी। मुझे लगा कि किसी ने मुझे पुकारा। मैंने इधर उधर देखा पर आसपास कोई नहीं था। फिर अचानक मुझे लगा जैसे नदी मुझसे बात कर रही है। उसने कहा, मैं नदी हूँ, हिमालय की गोद से निकलकर अपनी अन्य बहनों के साथ मिलकर विभिन्न प्रांतों से गुजरते हुए सभी लोगों की जरूरतों को पूरा करते हुए कल कल बहती हुई आखिर में मैं महासागर में समा जाती हूँ। बस यही मेरी कहानी है। फिर उसने मुझसे सवाल किया कि कहने को तो मैं जीवन दायिनी कहलाती हूँ, फिर क्यों मनुष्य मुझे प्रदूषित कर रहा है और मेरे अस्तित्व को खतरे में डाल रहा है।
सुषमा, आपने तो कुछ हद तक नदी की आत्मकथा ही कह डाली, लेकिन इस कार्यक्रम में इस सपने को सुनाने का मतलब हमारे श्रोताओं को समझ नहीं आया।
दोस्तों, आज हमारे देश में मौजूद विभिन्न नदियाँ अपने खोते अस्तित्व से इंसान को रूबरू करवाने के लिए किसी न किसी रूप में अपनी कहानी कहती नजर आती हैं।
फर्क सिर्फ इतना है कि हम उनके दर्द को समझ नहीं पाते। तो क्यों ना सुषमा, आज हम अपने कार्यक्रम में इसी विषय पर चर्चा करें।
जी हाँ महिपाल, आज हम बात करेंगे हमारे देश की नदियों तथा उनके अस्तित्व के बारे में। श्रोताओं, हमारे देश में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा जैसी प्रमुख नदियाँ हैं।
सुषमा, हमारे देश की नदियों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। हिमालय नदियाँ, दक्षिणी नदियाँ, तटीय नदियाँ तथा अंदरूनी ड्रेनेज बेसिन की नदियाँ।
महिपाल, हिमालय की ये नदियाँ बर्फ और ग्लेशियर के पिघलने से बनती हैं, इसलिए साल भर उनमें जल निरंतर बहता रहता है। इसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ शामिल हैं।
दक्षिणी नदियाँ प्राय बारिश पर निर्भर रहती हैं और अक्सर इनकी मात्रा में उतार चढ़ाव आता है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी आदि ऐसी ही नदियां हैं।
दोस्तों, हमारे देश में सैकड़ों छोटी बड़ी नदियां मिलकर एक पूरा जाल सा बिछा देती हैं।
सुषमा, ब्रह्मपुत्र नदी की अगर बात करें तो ये मानसरोवर से निकलती है। सिंधु और सतलुज भी यहीं से निकलती है। ज्यादातर समय ब्रह्मपुत्र भारत से बाहर हिमालय के समांतर बहती रहती है।
नमचा बरवा के पास यह अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा में प्रवेश करती है, जहाँ पर इसे डिहांग नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश तथा असम में यह 7 सहायक नदियों को अपने साथ मिलाती हैं।
इसके अलावा देश के मध्य भाग में नर्मदा उत्तर भारत और दक्षिण भारत में एक सीमा स्थापित करती है और ये नदी 1289 किलोमीटर लंबी है। प्रायद्वीपीय भारत में केवल नर्मदा, ताप्ती और माही ऐसी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं।
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में 1312 किलोमीटर बहने के बाद नर्मदा नदी अरब सागर में समा जाती है।
दोस्तों, कावेरी नदी भी भारत की महान नदियों में गिनी जाती है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है।
इस नदी के जल का प्रमुख स्रोत कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट में ताला हवेरी के आसपास है। इसका पानी सदियों से कृषि के लिए उपयोग में लाया जाता रहा है।
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कावेरी दक्षिण भारत के आधुनिक शहरों के लिए जीवन रेखा मानी जाती है। दोस्तों, कृपया हमारा ये कार्यक्रम ध्यान से सुने, क्योंकि कार्यक्रम में हम पूछेंगे आपसे एक सवाल।
महिपाल, जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा अपने दोस्तों के साथ मिलकर दिल्ली की यमुना नदी में तैरते थे।
क्या बात कर रही हो सुषमा, तैरना, वो भी यमुना के गंदे पानी में?
महिपाल, यमुना पहले साफ सुथरी हुआ करती थी, पर आज विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से मैली होती जा रही है।
सुषमा, गंगा नदी, जिसे हम अपने देश की जल संपदा का प्रतीक मानते हैं, आज अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जूझ रही है।
जलवायु परिवर्तन के कारण तेजी से पिघलते ग्लेशियर, नदी में बढ़ता प्रदूषण, विभिन्न जल विद्युत परियोजनाएं आदि इसके लिए खतरा पैदा कर रही है।
जी हाँ सुषमा, एक अनुमान के मुताबिक अगले 20-30 सालों में ये महान नदी केवल बरसातों में ही बहा करेगी।
मुझे तो अचरज होता है महिपाल कि उन 40 करोड़ लोगों का क्या होगा जो आज भी इस नदी पर आश्रित हैं।
गंगा और इसकी सहायक नदियाँ 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को उपजाऊ बनाए रखने में सहायक है।
पर यह ख्याल कि इंसान की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने वाली ये नदियाँ एक दिन खत्म हो जाएगी, यह सवाल ही दिल को दहला देने वाला है।
आज विभिन्न उद्योगों से निकला हानिकारक रसायन तमाम नदियों में जाकर उसे जहरीला बना रहा है।
लेकिन महिपाल, इसके लिए आम लोग भी उतने ही जिम्मेवार हैं, क्योंकि लोग अपने घरों का कूड़ा कचरा भी नदियों में बहा देते हैं।
दोस्तों, नदियों के प्रदूषण को रोकने तथा उनको जीवंत बनाए रखने के लिए पर्याप्त प्रयास तो हो ही नहीं रहे हैं। गंगा और यमुना जैसी नदियों को प्राथमिकता देकर प्रदूषण रोकने के लिए विशेष एक्शन प्लान बनाए गए हैं,
लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी इसके कोई विशेष नतीजे सामने नहीं आए।
दिल्ली में यमुना नदी के किनारे जिस तरह इमारतों का निर्माण पिछले कुछ सालों में किया गया है, काफी चिंता की बात है, जो आज 2010 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम की वजह से और तेज हो गया है।
महिपाल, गौर करने वाली बात यह भी है कि यमुना के डूब क्षेत्र यानी फ्लड प्लेन्स आज की तारीख में करीब करीब खत्म कर दिए जाएंगे
और उनकी जगह कंक्रीट के जंगल उभर आए हैं। ये फ्लड प्लेन्स भूमिगत जल को दोबारा से रिचार्ज करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं
और यही कारण है कि दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों का जलस्तर लगातार नीचे जाता रहा है।
दोस्तों, इस विषय पर और अधिक बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान रवि अग्रवाल जी, जो कि टॉक्सिस लिंक संस्था के निदेशक हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं।
रवि अग्रवाल जी, आपका हमारे कार्यक्रम एक दुनिया एक आवाज में स्वागत है।
नमस्कार।
सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि नदियाँ कैसे बनती हैं और इनके पानी के स्रोत क्या हैं?
नदियाँ तो प्राकृतिक हैं और जब से पृथ्वी है, जब से पानी है, तब से नदियाँ हैं। ये एक पानी का प्रचलन है कि पानी जब हवा से पहाड़ों में जाता है और फिर पिघलता है, फिर वापस समुद्र की तरफ जाता है, तो ये जो पानी का बहाव है ये नदियों में कन्वर्ट हो जाता है और नदियों पे ही सारे बड़े बड़े जो सिविलाइजेशंस हैं वो बसे हैं पुरातन काल से।
रवि जी, भारत की नदियों की आज स्थिति क्या है?
भारत में 14 बड़ी नदियां हैं और 55 करीब छोटी नदी और सैकड़ों और छोटे छोटी नदियां हैं। जो बड़ी नदियां हैं उन सब की हालत आजकल काफी गंभीर है। उसमें दो तीन जो विषय हैं जो सामने आते हैं। एक तो उनका पानी है बहुत प्रदूषित है और दूसरा जो पानी है वो कम होता जा रहा है नदियों में, क्योंकि जो बहाव है पानी का उसको हम अलग अलग उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं हम बड़े बड़े डैम बना रहे हैं बिजली के लिए, कहीं हम पानी निकाल रहे हैं खेती बाड़ी के लिए, और प्राकृतिक कारणों से भी जो क्लाइमेट चेंज के इशू हैं उसकी वजह से भी ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं और ये कहा जाता है कि अगले कुछ वर्षों में ये नदियों का पानी और कम हो जाएगा। तो इनको गंभीर कहना ही, इनकी स्थिति गंभीर कहना ही ठीक है मेरे ख्याल।
इस स्थिति के क्या कारण हैं?
इन स्थितियों के अनेकों कारण हैं। एक तो है कि हमने नदियों का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, हम इनको एक नालों की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया है। जो हमारे सारे बड़े बड़े शहर हैं और जो शहर हमारे हैं वो काफी बड़े हैं, जैसे दिल्ली 1.5 करोड़ का शहर है वो 2 करोड़ का शहर होगा, और जो और कानपुर जैसे शहर हैं वो भी करीब 60-70 लाख आबादी के शहर हैं और बढ़ रहे हैं। तो ये सब नदियों पे बसे हुए हैं और इनका सारा जो प्रदूषण है, सारा जो सीवेज है, ये नदियों में जाता है और ये सब नदियों को नष्ट करता है, उसके पानी को नष्ट करता है, वही पानी पीने के काम आता है। दूसरा है कि हमने नदियां जो पानी में, समुद्र में पानी जाता है, उसको हमारी एक सोच हो गई है कि ये पानी बेकार है, इस पानी को इस्तेमाल करना चाहिए। तो एक जो इकोसिस्टम की बात है कि पानी जहां भी जाता है वो अपने पूरा इकोसिस्टम तैयार करता है, वो हमारी सोच से बाहर हो गया है। तो इसलिए हमने नदी के पानी को डाइवर्ट करना शुरू कर दिया है। कई जगह बहुत बड़े बड़े बांध बनाने शुरू कर दिए हैं, 200 बांध गंगा पे बन रहे हैं दिल्ली से ऊपर भी, और इससे जो पानी, जो नीचे का बहाव है, पानी का बहाव बिल्कुल खत्म हो जाएगा और इससे जो पूरे जीव जंतु और पूरे जो वहां पर प्राकृतिक जो प्रक्रिया है वो नदी पे ही, पानी पे ही बसी हुई है। तो ये भी उसमें सारा जो बहाव हम बदल रहे हैं इंजीनियरिंग की वजह से, इसमें ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। और तीसरा जो है कि जो नदियों में जीव जंतु जो रहते हैं, अब मछलियां से रिवर डॉल्फिन, ब्लाइंड रिवर डॉल्फिन जो गंगा में रहती है, या घड़ियाल रहते हैं, इन सब पे बहुत असर पड़ रहा है, क्योंकि प्रदूषण से भी और पानी के बहाव से भी। और इसको हम देख रहे हैं कि जीव जंतु कम होते जा रहे हैं, जो पंछी हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो जो एक प्राकृतिक प्रक्रिया थी पानी के साथ जुड़ी हुई, वो हम बिल्कुल उसका हम प्रक्रिया बदल रहे हैं एक इंसानी जरूरत की तरफ।
रवि जी, प्रदूषण का असर नदियों के पानी को किस तरह नष्ट कर रहा है?
कई तरह के प्रदूषण है। एक तो सीवेज का प्रदूषण है। सीवेज के प्रदूषण से एक बैक्टीरिया होता है जिससे कि हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, और इससे पानी बिल्कुल पीने योग्य क्या नहाने योग्य भी नहीं है, किसी इस्तेमाल के योग्य, जिसको हम कहते हैं कि इरीगेशन वाटर क्वालिटी, वो क्वालिटी भी नहीं है नदियों में। इसमें कई तरह के प्रदूषण है, हैवी मेटल्स हैं, कई तरह के केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, और ये सब केमिकल्स हम घूम फिर के हमारे शरीर में वापस आते हैं, क्योंकि हमारे खाने में आते हैं, सब्जियों में आते हैं, जो मांस मच्छी खाते हैं उनमें आते हैं, और जो लोग वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं नदी, उनके शरीर में डायरेक्टली उसमें प्रवेश करते हैं। तो पानी जब तक साफ नहीं हो और इसमें इस तरह के केमिकल प्रदूषण मिले हों जिनको हम साफ नहीं कर, पानी अपने आप से साफ नहीं कर सकता, तो उससे एक परमानेंट सिचुएशन बन जाती है कि वो पानी कभी साफ नहीं होगा और वो पूरे इकोसिस्टम में फैल जाता है केमिकल।
इससे हमारी नदियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है?
पूरा जो सृष्टि का पूरा ही रचना है वो पानी पे बसी हुई है इस पृथ्वी के ऊपर। तो अगर आप कहीं से पानी का बहाव खत्म कर देंगे तो उसमें बहुत गहरा असर पड़ता है हर किस्म के जीव जंतु पे, और उसमें इंसान पे असर पड़ता है, लेकिन इंसान काफी उसमें कोप कर लेता है, लेकिन अलग किस्म के जीव जंतु हैं उनकी टॉलरेंस इतनी नहीं है, वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो हम कई जगह एक्सटिंक्शन देख रहे हैं, जो मार्श लैंड्स हैं वो मार्श लैंड्स खत्म होते जा रहे हैं, उसमें कई तरह के पंछी रहते थे, कई तरह के वहां पर अलग अलग जीव जंतु रहते थे, वो आप नहीं देखते। तो एक सोचना कि एक नदी नदी एक है, और नदी और पानी का जहाँ मिश्रण होता है, जो वेटलैंड है, वो अपना एक इकोसिस्टम है। तो एक पूरा एक इकोसिस्टम चेंज जो है उसका असर हम पूरी तरह समझ भी नहीं पा रहे हैं कि असर होगा, लेकिन इस गहरे तौर पे असर है इसका।
इनके विनाश को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है?
देखिए, पहले तो हमें ये सबसे पहले अपनी सोच में लाना पड़ेगा कि नदी का पानी बहुत आवश्यक है, नदी में होना, उसका हम चैनल चेंज करें या उसको हम उसका बहाव रोकें, उससे नदी नदी नहीं रह जाती। तो नदी को नदी ही छोड़ना ये बहुत आवश्यक है। तो एक नदी को छोड़ दिया जाए कि वो जैसे बहना चाहती है वैसे बहे प्राकृतिक तरीके से, और उसके बाद हम इसका प्रदूषण इसका कम करें, इसमें प्रदूषण नहीं जाने दें। ये दो कार्य कि हम अपने सोच में डालें, तब हमारे शुरुआत होती है इसके सोल्यूशन की तरफ।
रवि जी, नदियों की इंटरलिंकिंग के विचार से क्या आप सहमत हैं? इस बारे में कुछ बताएं।
देखिए, जो इंटरलिंकिंग का जो विषय है, ये एक इकोलॉजिकल डिजास्टर है, क्योंकि ये सोचना कि आप हिंदुस्तान की सब बड़ी बड़ी नदियां मिला देंगे कैनाल के द्वारा और उसको हम कंट्रोल कर लेंगे, ये इतने बड़े स्केल पे तो मेरे ख्याल भगवान भी इंटरवीन नहीं कर सकता, एक इंजीनियर की बात तो छोड़िए। ये जो इंटरलिंकिंग के एरियाज हैं, इसमें कई तो फॉरेस्ट आते हैं और इसमें कई ऐसे एरियाज आते हैं जहाँ लोग बसते हैं, तो क्या आप उन सब लोगों को उखाड़ देंगे वहां से? और क्या आप ये गारंटी कर सकते हैं कि जो एक नदी का पानी है और दूसरी जगह आप जा सकते हैं? तो एक 14 नदियों को आप सोच रहे कि आप इंटरलिंक करके एक बड़ा सा एक प्लम्बिंग सिस्टम बना देंगे, जिसका बटन दबाया कि पानी यहाँ से कर्नाटक, दिल्ली से कर्नाटक पहुंच गया और कर्नाटक से दिल्ली पहुंच गया। इस स्केल पे तो आज तक किसी ने किया नहीं है, ना ही संभव है, क्योंकि इसमें बहुत ही सारे अननोन्स हैं और बहुत ही सारा इसमें विनाश हो सकता है।
भारत में जल प्रबंधन को लेकर किस तरह की स्वदेशी प्रणाली अपनाई जा सकती है?
देखिए, हमारे देश में पानी की प्रणाली तो बहुत पुरानी है। आप अगर राजस्थान के रेगिस्तान में भी जाएंगे तभी भी आप देखेंगे कि वहाँ टांके लगे हुए थे जहाँ पर पानी को एकत्रित किया जाता था, पहाड़ों में टांके लगे हुए थे। जोधपुर जैसी जगह में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एक उनकी नॉर्मल प्रक्रिया थी कि उसमें बनाए। हर जगह नदी नहीं थी, तो लोगों ने पानी को एकत्रित करके और उसके साथ जीने की को एक टेक्नोलॉजी तैयार कर ली थी। धीरे धीरे हम इसको खत्म कर दिया है, क्योंकि हम एक सेंट्रलाइज्ड वाटर सोर्स पे आ गए हैं कि सरकार ही सब पाइप से पानी देगी। तो ये जो पूरे जो सिस्टम्स हैं इनको रिवाइव करने की आज के दिन काफी चलन है और लोग कोशिश कर रहे हैं, चेक डैम्स बना के वाटर कैचमेंट एरियाज को रिवाइव करके, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग करके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके। ये सब तरीके हैं जिसको हम अपनाएं, कि जिसको जैसे कहते हैं कि पानी जहां गिरे वहीं उसको पकड़ो, कैच बेटर वाटर वेयर इट फॉल्स, उसी स्थिति में हम पानी का पूरा प्रयोग कर सकते हैं।
नदियों को सुरक्षित रखने के लिए आम आदमी किस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं?
देखिए, एक तो पानी का जो कंजम्पशन है उस पर हमें देख रेख करनी चाहिए। ये नहीं कि हर आदमी पानी इस्तेमाल करता है, तो उसमें जरूरी नहीं है उसमें आप गाड़ी धोएं पानी से, या सुबह इतना पानी इस्तेमाल करें कि उससे आप ज्यादा पानी नाली में जाए। तो ये काम तो सब कर सकते हैं कि पानी का जो कंजम्पशन है उस पर हम थोड़ा कंजर्वेशन का ध्यान दें, जितना पानी आवश्यक है उतना ही इस्तेमाल करें। आप दिल्ली में देखिए, किसी को 30 लीटर पानी मिलता है, किसी को 300 लीटर पानी मिलता है, किसी को पीने का पानी भी नहीं मिलता है। तो ये इनइक्विटी खत्म होनी चाहिए, पानी को सबको बराबर पानी मिलना चाहिए। और दूसरा जो है, पानी को हम कंजर्व करने के, जो पानी बरसात का पानी है, ओवरफ्लो है, उसको हम फिर से रीयूज करें, रीसाइकिल करें, चाहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग से करें या आप इंडस्ट्री में हो तो इंडस्ट्रियल रीसाइकिलिंग करें। तो ये दोनों कंजर्वेशन के मेजर्स हैं, ये हर इंसान कर सकता है। किसी इंसान को 100-150 लीटर से ज्यादा पानी नहीं चाहिए एक दिन के अंदर, उतना ही हम सीमित रखें, ना कि हम 1000 लीटर की बात करें। तो पानी, हम सब उस पानी पे जी सकते हैं।
रवि अग्रवाल जी, आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत धन्यवाद आपका भी।
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक दुनिया एक आवाज, और आज हम बात कर रहे हैं नदियों के अस्तित्व के बारे में।
दोस्तों, भारत में पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत वर्षा है, फिर भी हमारे जल प्रबंधन में कभी भी इस ओर ध्यान नहीं गया है।
भूमिगत जलाशयों के अत्यधिक दोहन के कारण जल स्तर इतना नीचे चला गया है कि संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
कई क्षेत्रों में इसके कारण रेगिस्तान बनने की नौबत आ गई है। इसलिए अब बहुत जरूरी हो गया ये सुनिश्चित करना कि हमारे भूमिगत जलाशयों को दोबारा से रिचार्ज करने का मौका दिया जाए।
यह तब होगा जब हमारी नदियों में पर्याप्त जल प्रवाह रहे और वर्षा जल विशेषकर कम नमी वाले क्षेत्रों में व्यर्थ न चला जाए।
इसके साथ साथ आम नागरिकों का भी दायित्व बनता है कि नदियों के महत्व को समझे और उन्हें साफ रखने में अपना योगदान दे सकें और उन्हें साफ रखने में अपना योगदान दे।
अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो प्राकृतिक संसाधनों जैसे नदियों को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है।
जैसे कि अपने घर का कूड़ा करकट नदियों में ना डालें, अपने पालतू जानवरों तथा खुद भी नदियों में नहीं नहाएं,
मृत शरीर को नदियों में ना फेंकें, नदियों में कपड़े ना धोएं। इस तरह का परिवर्तन अगर हम अपने में ला सकें तो नदियों के अस्तित्व को काफी हद तक बचाया जा सकता है।
दोस्तों, इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का,
लेकिन दोस्तों विदा लेने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने पिछले कार्यक्रम में आपसे पूछा था कि पर्यावरण के बिगड़ते स्वरूप को सुधारने के लिए आप क्या करेंगे।
दोस्तों, इस प्रश्न के जवाब में हमें काफी सारे श्रोताओं ने अपनी अपनी राय भेजी है, इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं।
दोस्तों, आज का हमारा सवाल है, नदियों के अस्तित्व को जीवंत बनाए रखने के लिए आप अपने स्तर पर क्या योगदान करेंगे।
ए, घर का कूड़ा करकट नदियों में नहीं डालेंगे।
बी, मृत शरीर को नदियों में ना फेंकना।
सी, नदियों के तट पर कपड़े ना धोना।
डी, या फिर ये सब करेंगे।
अपनी राय हमें SMS के जरिए भेज सकते हैं। टाइप कीजिए आवाज स्पेस देकर A, B, C या फिर D स्पेस देकर अपना नाम और पता और भेज दीजिए 9811846246 पर।
नंबर एक बार फिर से सुन ले, 9811846246। इस विषय पर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम एक दुनिया एक आवाज, केयर ऑफ वन वर्ल्ड साउथ एशिया, C5, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, न्यू दिल्ली 110016।
आप हमें फोन भी कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर है 0114168900 और हमारा एक्सटेंशन नंबर है 116।
दोस्तों, किसी कारणवश अगर आप हमारा ये कार्यक्रम रेडियो पर ना सुन पाए हो तो आप हमारी वेबसाइट www.edaa.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं।
इसी वादे के साथ कि अगले हफ्ते बुधवार के दिन शाम 4:30 बजे एक और नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे महिपाल और सुषमा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।